जूझना ही तय है अंधेरे में। चंद्रकला त्रिपाठी। इन्वर्टेड कामा। दार्शनिकों ने विश्व की सिर्फ व्याख्या की है, लेकिन सवाल है उसको बदलने का। इन्वर्टेड कामा बंद। मार्क्स एंगेल्स। और मुक्तबोध के लिए, सत्य को अनुभूत करना सहज है, मुश्किल बहुत उसके कठिन निष्कर्ष मार्गों पर चले चलना। मुक्तिबोध अपने समस्त साहित्य में ज्ञान और चिंतन की क्रियागत प्रणति की समस्याओं से जूझते रहे हैं। ये उनके मध्यवर्गीय काव्य नायकों के आत्मसंघर्ष की भी धुरी है। दुनिया को बदलने की चिंता मुक्तिबोध को है, क्योंकि उसका प्राप्त परिदृश्य बहुत बेरहम और मनुष्यता के लिए घातक है। मार्क्सवाद मनुष्यता के मुक्ति का दर्शन है। मुक्तिबोध इस दर्शन के साथ युग के बड़े सवालों से जूझते हुए जीवन के सृजनात्मक आयामों की खोज करते हैं, क्योंकि यही वह शक्ति है जो इतिहास के इस अंतर्विरोध भरे दौर से निर्णायक संघर्ष का मोर्चा बना सकती है। यानी जनता के श्रम, संबल और विश्वास का दोहन करने वाली पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाले शक्ति स्रोत यही हैं। अंधेरे में शीर्षक कविता में जनता के मुक्ति के महान स्वप्न की यही संघर्ष भरी प्रक्रिया है, जो अपने समय की भयानक पीड़ा भरी कसौटियों से गुजरती है। इस संघर्ष में उनके काव्य नायक का उत्पीड़ित जनता के मुक्ति युद्ध में अपनी ऐतिहासिक भूमिका दृढ़ कर लेने का संघर्ष भी है, जिसमें एक सकर्मक ऊंचाई और व्याप्ति है। मुक्तिबोध नई कविता के कवि है। नई कविता का मुख्य स्वर मध्यवर्ग की आकांक्षाओं और संघर्षों पर केंद्रित रहा है। ज्यादातर कवियों के व्यक्तिवादी रुझान के कारण इस वर्ग की व्यक्तिगत हताशा, मनोदौर्बल्य या असामंजस्य की बात ही उनके लिए मुख्य है, किंतु मुक्तिबोध का चुनाव यह नहीं है। नई कविता की पतनशीलता और कलावादी पाखंड से टकराने वाले वे अकेले कवि और विचारक रहे हैं। उनका प्रयत्न मध्यवर्ग के सक्रिय, संवेदनशील और सामाजिक को पहचानने का रहा है। इसके लिए उनके काव्य नायक अपने वर्गीय अंतर्विरोधों के अलगावों में गर्क नहीं है, बल्कि उनमें अपनी अनिवार्य सामाजिक भूमिका के लिए संघर्ष की चेतना है। नामवर सिंह के अनुसार अंधेरे में के काव्य नायक की मुख्य समस्या अस्मिता की खोज है। उनकी आकांक्षा उस अस्मिता की खोज को वर्ग चेतना के रूप में देखने की है। अस्मिता की खोज के इस मार्क्सवादी भाष्य में न उलझते हुए यह कहा जा सकता है कि अंधेरे में का काव्य नायक यदि कुछ खोज रहा है, तो वह खोज है नए मानवीय इतिहास की रचना करने वाली क्रांतिकारी शक्तियों की। अतः जनता को गुलाम बनाने वाली शोषक शक्तियों से संघर्ष की बात ही उनके लिए मुख्य है, तथा तमाम कविताओं इस संघर्ष को अधिक प्रभावी बनाने वाली संभावनाओं की खोज करती हैं। नामवर जी के अनुसार यदि मुक्तिबोध के काव्य नायक को अस्मिता के लोप यानी मिथ्या चेतना से आक्रांत मान भी लिया जाए, तो उसके भीतर ऐसा क्या बेचैन और सक्रिय है जिसके कारण वह जिंदगी के अंधेरे कमरों में उसकी अनिवार्य आहट सुनता है। वह जो और कोई नहीं, उसकी अपनी चेतना का वह प्रखरतर होता हुआ रक्त प्लावित स्वर है, जो उसके आत्मसंघर्ष को क्रांतिकारी जनसंघर्ष से गहरी एकात्म तक विकसित करता है। इस प्रकार निजी अंतर्विरोधों से सचेत संघर्ष की यह प्रक्रिया उसे सामाजिक अंतर्विरोधों से निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार करती है। ऐसा नहीं लगता कि मुक्तिबोध के काव्य नायक की बंद स्थिति का कारण व्यवस्था से भय है। यद्यपि व्यवस्था दमनकारी है और उसके इस राक्षसी रूप की पहचान भी उसे है, किंतु इस व्यवस्था के मरणोन्मुखता से भी वह अपरिचित नहीं है। रात के अंधेरे में निकलने वाले जुलूस को मुक्तिबोध ने इस हिंसक तंत्र के शक्ति परीक्षण के रूप में चिन्हित किया है। यह अनायास नहीं है कि इसे मृत दल की शोभा यात्रा कहते हैं। जनता के शत्रुओं को मुक्तिबोध अपराधियों का संयुक्त परिवार कहते हैं और देखते हैं कि उसमें पूंजीपति, नेता, पत्रकार, कवि और अफसर जैसे सफेदपोशों के साथ नगर का कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी शामिल है। रात के भयानक अंधेरे में यह जुलूस जनक्रांति के दमन के लिए जा रहा है, किंतु मुक्तिबोध जानते हैं कि जनता के शत्रु अपने ही नाखूनों से पागल हो अपना सीना चीर डालते हैं। इनका आतंक तभी तक है जब तक जनता इससे संघर्ष की अपनी भूमिका के प्रति सचेत नहीं है। मुक्तिबोध के काव्य नायक के लिए वर्ग विभाजित पूंजीवादी समाज की ये प्रतिक्रियाएं और परिणतियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं। इसलिए व्यवस्था अपने पूरी आतंक के बावजूद उसका भय नहीं है। उसकी प्रधान समस्या अपनी श्रेणी के मनुष्य की वे व्यक्तिवादी अंतर प्रवृत्तियाँ हैं जो उसे खतरनाक ढंग से व्यवस्था के हितों की ओर ले जाती हैं, तथा इस प्रकार उसे शासक वर्गों की विचारधारा और पद्धति के अधीन बनाकर समाज के जीवित संघर्षशील हिस्सों से अलग थलग कर देती हैं। उसकी समस्त दक्षता या विशेषज्ञता की आकर्षक कीमत लगा दी जाती है। इस प्रकार इस जनविरोधी तंत्र का आज्ञाकारी पुर्जा भर होकर रह जाता है, उतना ही आंतरिक, उतना ही बेरहम और उतना ही जनविरोधी। इस ठंडी और बेजान नियति में उसकी गुलामी सर्वहारा के गुलामी से कम नरकीय नहीं है। इसीलिए उसकी मुक्ति के सवाल भी सर्वहारा के मुक्ति के सवाल से कहीं ज़्यादा पेचीदा हैं, और यही सवाल मुक्तिबोध की चुनौती हैं। मध्यवर्ग के वर्ग सहयोगी चरित्र के प्रति मुक्तिबोध की गहरी ग्लानि और गुस्सा है। इसे उन्होंने व्यवस्था के उस निर्मम व्यूहरचना के रूप में पहचाना है जिसके अंतर्गत उसके दमन और अन्याय के विरोध का कारगर मोर्चा बना सकने वाली शक्तियाँ सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के स्तर पर गलत मूल्य विधान में डाल दी जाती हैं और विकेंद्रित होकर मनुष्य के लिए घातक समझौतों की राह पकड़ लेती हैं। इस प्रकार का मध्य वर्ग, जिसमें जीने की स्वाभाविकता और आज़ादी के लिए चिंतन और संघर्ष की क्षमता है, तथा जो उत्पीड़ित मेहनत कष्ट जनता को क्रांतिकारी ताकतों में बदलने वाला महान शिक्षक हो सकता है, चिलचिलाती हुई दूरियों, ठंडे फासलों, बियाबानों या अपावन अंधेरों का शिकार होकर अभिशप्त खोहों या निर्जीव चट्टानों में बदल जाता है। मध्यवर्ग के एक बड़ी संभावनापूर्ण तबके के इस हसर को मुक्तिबोध ने बड़ी गहरी पीड़ा के साथ देखा है। नामवर जी ने अंधेरे में कविता के अंधेरे को इस स्वप्न कथा का ऐसा परिवेश माना है जिसमें चीज़ों को और का और कर देने की क्षमता है। उनके अनुसार इस अंधेरे के कारण इस जुलूस की भयावहता कहीं और बढ़ जाती है और जो दिन के उजाले में भीड़ भाड़ में कहीं दब जाता है। यद्यपि नामवर जी के लिए भी मुक्तिबोध की इस कविता का यथार्थ इतना सरल नहीं है, किंतु अंधेरे की उनकी यह व्याख्या अपर्याप्त है। वैसे भी जुलूस में शामिल तत्वों की दिन की दिनचर्या से पाठकों को मुक्तिबोध ने अपरिचित नहीं रखा है। गहन मृतात्माएं इसी नगर के हर रात जुलूस में चलती, परंतु दिन में बैठती हैं मिलकर करते हुए षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों में, घरों में। तो स्पष्ट है कि अंधेरा इस कविता का परिवेश भर नहीं अपितु कविता के समूची अर्थ प्रक्रिया से गहरे संबद्ध है। मुक्तिबोध के काव्य नायक का संघर्ष इकहरा नहीं है, उसके भीतर कठिन अभ्यंतर ग्रंथियों और बाह्य समस्याओं के तनाव हैं। दूसरी तरफ ज्ञान और संवेदनाओं को मानवीय दीप्ति और प्रखरता देने वाले सकर्मक जीवन से कटाव की यातनाएं कम नहीं है। इसके अतिरिक्त निसंदेह यह अंधेरा इस मुनाफाखोर तंत्र का वह कवच भी है जिसके नीचे उसकी सारी पशुता और स्वार्थ छुप जाते हैं। मुक्तिबोध ने अंधेरे और प्रकाश के पारंपरिक प्रतीकार्थ को ही विकसित किया है। अंधेरा सर्वत्र जड़ता या ज्ञान से अवरुद्ध जीवन की पीड़ादायी स्थितियों को व्यंजित करता है, तथा प्रकाश सच्चाई के सुनहरे तेज अक्षों का प्रकाश है। मुक्तिबोध के यहाँ अंधेरा प्रकाश से ज़्यादा दोहराया गया है और इसके तमाम सेट्स हैं। काली स्याह शिलाएँ, तेजाबी काला गटर, सांवले गुहा अंधकार, ठंडा अंधेरा, अंधियारा ताल, नीला पल्ला, तमश्याम सलिल, जैसे तमाम प्रतिकाशित बिंब मिलते हैं। सदैव ये मनुष्य को धुरहीन बनाने वाली बाहरी भीतरी स्थितियों या भावों के व्यंजक हैं। मुक्तिबोध के अनुसार जीवन की धुरी जीवन का बृहद लक्ष्य है। यह बृहद लक्ष्य मानव की केंद्रीय प्रतिक्रियाओं का अविभाज्य अंग बनकर जीना है। मुक्तिबोध इसी को बिजली भरी तड़पदार जिंदगी कहते हैं। यह जिंदगी मेहनत और मुक्ति के काम में लगे हुए सर्वहारा की शानदार जिंदगी है। इसमें कठिन संघर्ष, जीवन संघर्ष और यात्रा के बावजूद जीवन का स्वाभाविक रागोल्लास, मानवीय परस्परता और सक्रिय सामूहिक भावना है। मुक्तिबोध में इस वर्ग के लिए गहरी करुणा, प्यार और उम्मीद है। उनके यहाँ जनता की प्रायः लोक युद्धों में दक्ष छवि उभरती है, जिसकी शक्ति से अपने काव्य नायक के लिए नैतिक चुनौतियों का पक्ष खड़ा करते हैं। उसका संघर्ष जनता के उस अभिन्न मित्र का संघर्ष है जो सच्ची मैत्री की अग्नि परीक्षाओं में तप रहा है और जनता के शत्रुओं की खतरनाक प्रणालियों और पैतरों का जवाब ही मोर्चा तैयार कर रहा है। जिंदगी के मर्म स्पर्श उसकी चेतना को उदार, प्रखर और संकल्पवान बनाते हैं। मुक्तिबोध अपने काव्य नायक की उस अहमबद्धता के प्रति सर्वाधिक खबरदार है, जिसके भीतर शासक वर्गों के लिए गुंजाइशें निकल आती हैं। व्यक्तित्वांतरण की विदीर्णकारी प्रक्रिया में उसे बिना किसी रियायत के उतार देते हैं और खतरों के खिलाफ लड़ने की उसकी क्षमता को चमकाते चलते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में मध्यवर्ग अपनी समस्त सामाजिक संदर्भता और लक्षणों के साथ प्रवेश करता है। मध्यवर्गीय व्यक्तित्व में विभाजन स्वाभाविक है और विभाजित होने की पीड़ा भी उतनी ही स्वाभाविक है, किंतु मुक्तिबोध के इस मध्यवर्ग को दिशा देने की बात महत्वपूर्ण है। इस प्रकार उनका सत्य विभाजित व्यक्तित्व के आदर्शीकरण का सत्य नहीं, बल्कि विभाजित व्यक्तित्व से संघर्ष का सत्य है। मुक्तिबोध की काव्य नायक में निर्णायक स्थिति उसकी जीवनोन्मुक्तता की है। अपनी मानवीय बेचैनी के साथ वह मनुष्य की मुक्ति के महान स्वप्न की उस संघर्ष भरी प्रक्रिया में प्रवेश करता है, जिसका महत्वपूर्ण प्रस्थान उसकी गहन आत्मा समीक्षा है तथा जिस पर सच्चित वेदना का सजग नियंत्रण बना हुआ है। कुछ आलोचकों के लिए मुक्तिबोध जयशंकर प्रसाद से प्रभावित कवि हैं। निसंदेह मुक्तिबोध ने प्रसाद की कामायनी को एक चुनौती की तरह लिया है और लगभग 2 दशकों तक उसकी समस्याओं से जूझते रहे। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध स्वयं रचने की वैयक्तिक प्रक्रिया के कवि हैं। वस्तुगत यथार्थ में मानव मन की जटिल प्रक्रियाओं के हस्तक्षेप को उन्होंने गंभीरता से लिया है, किंतु मुक्तिबोध निर्जन या अंतर्मुखी वैयक्तिकता के कवि नहीं है। उनके सामने भयानक संकटकाल की भीतरी बाहरी गुत्थियों को समझने की जिम्मेदारी है। व्यक्ति चरित्र घटना या परिस्थिति की सापेक्ष समझ ही उन्हें मान्य है। इस दृष्टि से मुक्तिबोध निराला के ज्यादा करीब है। उनकी पक्षधरता और संघर्ष में निराला की यथार्थ चेतना और रचनात्मक जिम्मेदारी का स्पष्ट विकास देखा जा सकता है। वही जनमन करुणा और लोकहित मुक्तिबोध का अभिष्ट है, जो निराला की मुख्य आकांक्षा है। मुक्तिबोध के अनुभव में निराला के समय की सारी गुत्थियां अपनी बड़ी चढ़ी भयानकता के साथ मौजूद हैं। इसलिए अनायास नहीं कि निराला का स्वप्न और संघर्ष का प्रखर और गंभीर विकास मुक्तिबोध में दिखाई देता है। मुक्तिबोध के अंधेरे को निराला ने मारण रजनी के रूप में पहचाना और लिखा है। यूनाइटेड कामा, मंदिर में बंदी है चारण, वन में विचर रहे हैं वारण, रोता है बालक निष्कारण, मारण रजनी है। यूनाइटेड कामा बंद। ठीक यही रूपक मुक्तिबोध की इस कविता में ज्यादा संश्लिष्ट, सघन और विकसित रूप लेता है। निराला ने भी मारण रजनी के मूल में व्यक्तिगत लाभ और लोभ को ऊपर रखने वाले मध्यवर्गीय बौद्धिकों के वर्ग सहयोग की मुख्य भूमिका देखी है। इन्हें ही वे शासक वर्गों का चारण कहते हैं। निराला का रोता हुआ बालक भी भावी जन है, जिसे मुक्तिबोध का काव्य नायक पूरी जिम्मेदारी के साथ गांधी के कंधे से उठाता है तथा जो क्रमशः ज्ञान और चेतना से लैस समूह की शक्ति में बदल जाता है। मुक्तिबोध इसे सूरजमुखी फूल गुच्छे लिखते हैं। यह नया आलोक पैदा करने वाली जनशक्ति है, जो क्रमशः अपने हक और भविष्य के लिए मोर्चाबंद हो रही है। मुक्तिबोध यहाँ बेहिचक वजनदार राइफल लिख रहे हैं, यानी जनता के भविष्य निर्माण में वर्ग संघर्ष की अपरिहार्यता समझते हुए शांतिपूर्ण संक्रमण के सिद्धांत के प्रति अपनी स्पष्ट असहमति जाहिर करते हैं। जबकि ख्रुश्चेव तक आकर समाजवादी सोवियत रूस में भी शांतिपूर्ण संक्रमण की बात अस्वीकार कर ली गई थी। भारतीय वामपंथी भी संशोधनवादी रुख अपनाकर किसानों, मजदूरों और छात्रों का दमन करने वाली सरकार के साथ हो रहे हैं। नेहरू के पंचशील में उन्हें अपना सुविधाजनक तर्क मिल गया था, किंतु मुक्तिबोध को पूंजीवादी जनतंत्र के प्रति कोई भ्रम नहीं था। वे पूरी जिम्मेदारी के साथ वजनदार राइफल लिख रहे थे और समझ रहे थे। जनता के मुक्ति आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े जनकवि नागार्जुन ने भी क्रांति के लिए जनता के इसी उभार को कारगर माना है। इस प्रकार सत्ता की अश्लीलता के प्रति निराला की आक्रामकता मुक्तिबोध के मूल्य स्पर्श चिंतन द्वारा और धारदार उठती है। अंधेरे में कविता के पहले बंद में प्रश्न आता है, कौन मनु? मुक्तिबोध का यह मनु कामायनिक मनु की तरह एक सामाजिक व्यवस्था के ध्वंस से निकला है। मुक्तिबोध लिखते हैं, इतने में अस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलिस्तर, गिरती है चूने भरी रेत के सकती है पपड़ियां इस तरह, खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं अपी। इस प्रकार कामायनी के ढहती सामंती व्यवस्था के निर्मित निर्मिति मनु यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्विरोध से मानी जटिल वैयक्तिकता का प्रतीक बनकर प्रस्तुत होता है। यह मनु जिंदगी के अंधेरे के बीच खड़ा है, किंतु स्थितियाँ कदापि जड़तापूर्ण यथास्थिति के पक्ष में नहीं है। क्रमशः गतिमान होती हुई वैयक्तिकता निजी अंतर्विरोधों से संघर्ष करती हुई जगत की जटिल वास्तविकता में प्रवेश करती है और स्वप्न शुरू हो जाता है। स्वप्न जिस पर बाहर भीतर के तूफान को व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। पूंजीवादी समाज व्यवस्था के अंतर्विरोधों के प्रति खबरदार होते हुए काव्य नायक को किसी भव्य हताशा में डाल देना मुक्तिबोध का चुनाव नहीं है। वे उसे परिवर्तन कामी शक्तियों की पहचान के लिए गहरी यातनापूर्ण प्रक्रिया में डाल देते हैं। इसीलिए प्रत्येक ठहराव के विरुद्ध खड़ी ताकत की समझ उसके लिए संभव हो जाती है। तम श्याम परिदृश्य को चीर कर बाहर आने वाली तमाम तड़पदार शक्तियां उठान ले रही हैं, जिनके कारण परिवर्तन की गति तेज होती है और बाहर भीतर के बड़े तूफान से नए मनुष्य का जन्म होता है। तिलक्ष्मी खो का शिलाद्वार खुलता है, यानी काव्य नायक के लिए चीजों की अस्पष्टता खत्म होती है। इस प्रकार निजी और बाह्य अंतर्विरोधों के प्रति उसकी दृष्टि की वस्तुपरकता दृढ़ होती जाती है तथा वह रक्तालोक स्नात पुरुष के रूप में परिवर्तन की प्रखर क्रांतिकारी चेतना का साक्षात्कार करता है। यद्यपि इस व्यक्तित्व की रहस्यमयता अभी कायम है, संभवतः इसलिए कि निज की परिपूर्णता के आविर्भाव का संघर्ष प्रक्रिया में है। व्यक्ति और वस्तु जगत के सत्य की गहरी समझ के कारण ही मुक्तिबोध कविता के निर्णित स्थितियों के कवि नहीं है। किसी भी स्तर पर वे अपने देश काल के खतरनाक और गंभीर प्रश्नों से बच निकलने की सुविधा नहीं लेते। यही कारण है कि रक्तालोक स्नात पुरुष को अनुभव करने वाले काव्य नायक पर दोहरी चेतना का दबाव बना हुआ है। उसमें इस क्रांति पुरुष के प्रति आकर्षण भी है और भय भी। संशय और भय मध्यवर्गीय चरित्र के अंतर्विरोध है। मुक्तिबोध मध्यवर्गीय व्यक्तित्व की प्रत्येक उलझन प्रत्येक गांठ से टकराते हैं। अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति कहकर काव्य नायक अपने अस्तित्व की मूलवान संभाव्यता की चिंता करता है और होने का द्वंद्व यहाँ तीखा हो जाता है। हैं और होने का द्वंद्व यहाँ तीखा हो रहा है। इसी के साथ यथास्थिति चाहने वाली शक्तियों की सावधानी खतरनाक मोड़ लेती है। यूनाइटेड कामा, जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार कर एक मशाल बुझा दी है। यूनाइटेड कामा बंद लिखकर मुक्तिबोध अराजक तंत्र का उन्मादी आत्मविश्वास लक्ष्य करते हैं। दूसरे बंद में काव्य नायक के सामने मुक्ति काव्य मनुष्य के उसके पूरे अस्तित्व की मांग करने वाली क्रांति की चेतना का उठता हुआ कद है, जिसको समझने के साथ उसकी आत्मसमीक्षा सजग और दिशावान होती है तथा आत्मा में सच्चित वेदना धक उठती है। वह अपनी जंग और जकड़न का निर्णायक प्रहार की शक्ति के साथ उठता है और झांकता है बाहर। बाहर सोनी है राह, अजीब है फैलाव। जीवन के उत्पाद और उष्मापूर्ण पर फैला हुआ सर्द अंधेरा, ढीली आंखों से विश्व देखते हुए गमगीन तारे जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान न दे सकने वाले चिंतन है। यहाँ मुक्तिबोध ने यथास्थिति की निगरानी करने वाले सामंती तत्व के रूप में अंधियारे पीपल का प्रतीक दिया है। इस प्रकार वे स्वाधीन भारत की उस विचलन भरी सांस्कृतिक प्रक्रिया को लक्ष्य करते हैं जिसमें साम्राज्यवादी पूंजी की इच्छाओं के दबाव कायम है। भारतीय समाज में पड़े हुए सामंती अवशेषों के आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के प्रति मुक्तिबोध स्पष्ट है। अन्यत्र उन्होंने इन्हें शासक वर्गों के वक्त जरूरत काम आने वाले फुर्तियां कहा है। इस मोड़ पर अंधेरे की बंद स्थिति का विरोध बनाए रखने के लिए रात का पंक्षी आता है, जो वस्तुतः मनुष्य के जड़ताओं के विरोध के प्रति चेतन और अग्रसर बनाने वाले प्रेरक विचार का प्रतीक है। इस प्रकार अंधेरे की सारी दुष्ट इच्छाओं पर भारी पड़ने वाले विरोध का अग्रगामी तेवर निखरता चलता है। जुलूस के रूप में मुक्तिबोध ने पूंजीवादी समाज व्यवस्था को चलाने वाले तत्वों का राक्षसी गठबंधन पहचाना है। इसे मृत दल की शोभा यात्रा लिखते हुए वे अपना प्रखर इतिहास बोध दे रहे हैं। वे जानते हैं कि वर्तमान सामाजिक संरचना को टूटना ही है। भविष्य के सत्य को उन्होंने स्वप्न के जरिए देखा है। इस प्रकार मुक्तिबोध कहीं भी यथार्थवादी दृष्टि की कसौटियों की अनदेखी नहीं करते। भैरव मुक्तिबोध के लिए विनाश शक्ति का आशय देने वाला मिथक है। अंधेरे में कविता में यह इतिहास की गति को रोकने वाली प्रगतिगामी शक्ति के रूप में प्रकट होता है। कवि, आलोचक और पत्रकार आदि को भी शोभा यात्रा का भीतरी तत्व मानकर वे अपनी अवसरवादिता का भेद खोलते हैं। वे देखते हैं कि सत्ता का पिछलग्गू बनकर ये बौद्धिक जन अपना नया मौलिक या श्रेष्ठ रचने की क्षमता से हीन हो चुकी है। व्यवस्था का बाजा ढोने और उसके लिए धुने निकालने की घिनौने नियति के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यही अचानक मुक्तिबोध का काव्य नायक इस विचित्र प्रोसेशन द्वारा देख लिया जाता है। उसके नंगे जनविरोधी रूप को पहचान कर वह व्यवस्था के लिए खतरनाक हो उठता है। उसके व्यक्तित्व की सुख और सुरक्षा चाहने वाली ग्रंथियां संवेदनशील हो उठती हैं और वह भागता है। इस प्रकार के पलायन भय या संशय के कारण मुक्तिबोध को सुसंगत मार्क्सवादी मानने में रामविलास जी को कठिनाई होती है, किंतु वर्ग विभाजित समाज के भीतरी बाहरी तनावों से निरपेक्ष जीवन की स्वीकृति मुक्तिबोध के लिए कठिन है। अपने काव्य नायक के संघर्ष को भी उसके परिप्रेक्ष्य की जटिलताओं से काट कर नहीं दे सकते हैं और न ही उसकी निजी ग्रंथियों की अनदेखी कर सकते हैं। कविता के चौथे बंद में वास्तविक जीवन के घिरावों और तनावों की ज्यादा स्पष्ट उल्लेख है। स्वाधीन भारत की विषमतापूर्ण आर्थिक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं आदि अपनी समस्त निष्फलताओं के साथ सामने आती है। सत्ता के जनविरोधी फासिस्ट चरित्र को लोकतंत्र के ऊपरी दिखावे की भी जरूरत नहीं है। चारों ओर दमन और आतंक। जैसे जैसे पूंजीवादी जनतंत्र की खूंखारी बढ़ती है, मुक्तिबोध के लिए क्रांतिकारी चेतना के स्रोत, संगठन और शक्तियों का स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। इसी रूप में मुक्तिबोध ने यहाँ बरगद का प्रतीक लिया है। यह उनका प्रिय प्रतीक है जो क्रांतिकारी चेतना का ज्यादा परिपक्व और संभावनापूर्ण आशय देता है। यह वृक्ष मनुष्य की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। इतिहास की सकारात्मकता और परंपरा का जीवित भी इसमें व्यंजित है। यह मुक्तिबोध के काव्य नायक को एक सिरफिरा जन्म मिलता है। यह अनायास नहीं है कि दुनिया के महान क्लासिक रचने वाले साहित्यकारों ने भयानक युगीन संकट के विरुद्ध सत्य का निर्भीक पक्ष ले सकने वाले चरित्र के रूप में पागल का सृजन किया है। सामान्य मनुष्य में सत्य की त्वरा के प्रतिकूल पड़ने वाले तमाम दबाव होते हैं। मुक्तिबोध का सिरपिरा भी पूरी निर्ममता के साथ मध्यवर्ग की परजीविता, दंभ और स्वार्थ पर चोट करता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ऋषि अजरगत के समान छोटी गलती का बड़ा दंड पाने वाले मध्यवर्ग की विडंबना यहाँ और गहराती है। भीतरी बाहरी दुनिया का द्वंद्व तीखा हो रहा है। प्रज्वलित धी सुसंगत और विकसित हो रही है। उसमें जीवन के अंतर विरोधों व विभिन्न द्वंद्वात्मक परिस्थितियों के बीच संतुलन रखने का विवेक बना हुआ है। मनुष्य की मुक्ति संघर्ष के प्रश्न का खिंचाव अत्यंतिक हो उठा है। इसीलिए जीवन के स्वाभाविक धारा से अलग जा पड़े अनुभव, वेदना और निष्कर्ष भी तेजोदीप्त हो उठते हैं। जूझना ही तय है कि साहसिक फैसले की भूमिका यही है। इस फैसले के विरुद्ध सम्मुख विरुद्ध और आक्रांत स्थितियों से संघर्ष की अनिवार्यताएं हैं। वहां सांवली हवाओं में काल टहलता है, यानी समय को मुक्तिबोध ने गतियों, मतियों, कोणों और प्रतिक्रियाओं की संक्रांतता में ही देखा है। बूढ़े पक्षी यहाँ परंपरा के खतरनाक प्रतीक हैं, यानी शोषक पीड़क शक्तियां चारों तरफ आतंक की चुस्ती और जीवन निरुपाय बिखरता हुआ। तिलक का विनायक के फैसले के लिए अग्निमय धार की तरह आते हैं। इस प्रकार मुक्तिबोध जड़ता या जनविरोध के कठिन पैतरे के प्रति हरदम सावधान है। इसके अतिरिक्त जीवन की अनवरत शक्तिमान होती हुई अग्रग्रामिता को वे उसके विश्वसनीय संघर्ष में देखते हैं। उस मध्यवर्गीय क्रांतिकारी का करुण हर्ष मुक्तिबोध के काव्य नायक के लिए सबक की तरह है, जो जरूरत से बहुत बहुत कम भागी होने के कारण व्यवस्था के खूनी खेल का शिकार हो जाता है। उससे मुक्तिबोध ने कार्यक्षमता से वंचित असंग अस्तित्व के रूप में पहचाना है। इस प्रकार मुक्ति के लिए संगठित संघर्ष की चुनौतियों के प्रति मुक्तिबोध के काव्य नायक की एकाग्रता बढ़ती है। व्यवस्था के कपट का उतना ही सतर्क जवाब देने की क्षमता के साथ ही वह अपनी आत्मा को उसकी समस्त विद्रोह चेतना के साथ व्यवस्था के खूनी क्रॉस एग्जामिनेशन से साफ साफ निकाल ले जाता है। इस प्रकार उसके आत्मसंघर्ष को जनसंघर्ष से गहरी एकरूपता के लिए जरूरी विस्तार प्राप्त होता है। गिरता हूँ चुपचाप पत्र के रूप में किसी एक जेब में, वह जेब किसी एक फटे हुए मन की। और निजता घरी भास्कर और अग्निमय होती है। उसमें अपने समस्त जड़ और पतनशील से संघर्ष तीव्र होता है। जीवन के विद्युत स्पर्शों का आवेश व्यक्तित्व में निर्णायक होता जाता है। इसलिए क्रांति की गंभीर जिम्मेदारी भरी गुप्त तैयारियां उसके लिए अनजानी नहीं रह जाती और वह परिणत होता है। इस व्यक्तित्वांतरण को मुक्तिबोध ने मनुष्य के मुक्तिकरण का अनिवार्य मोर्चा माना है। क्रांति को उन्होंने कहीं भी आसान चीज की तरह नहीं लिया है। वे उसे विश्व घटनाक्रम के जोखिम भरे अनुभवों के संक्रांत परिप्रेक्ष्य में ही देख रहे हैं। सशस्त्र संघर्ष को वे लोक युद्ध का अंतिम मोर्चा मानते हैं तथा उससे पहले उन तैयारियों की आवश्यकता समझते हैं जिनके द्वारा जनता मूल्यों और प्रणालियों को विकृत करने वाले तत्वों के प्रति खबरदार होती है। मुक्तिबोध जनता में जगत समीक्षा का ज्ञान और साहस अनिवार्य मानते हैं। उसकी तीव्र भावनात्मकता उन्हें आश्वस्त करती है। यह आवश्यक है कि जनता के प्रति उनके प्यार और विश्वास में एक आत्यंतिक आवेश भी है, जिसके कारण वहां उनकी दृष्टि की द्वंद्वात्मकता प्रभावित होती है। संभवतः ऐसा इसलिए है कि इस जनता को उन्होंने जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी के जरिए नहीं समझा है, इसलिए उसके अंतर्विरोधों पर उनकी दृष्टि नहीं गई है। इसीलिए अंधेरे में कविता में आए जनक्रांति के चित्र भावुक आशावादिता के अतिरंजना से बच नहीं पाए हैं, किंतु यहाँ तर्क स्वप्न का है। इसमें चीजों का स्फीत या अत्यंतिक हो जाना अविश्वसनीय नहीं लगता। राह के पत्थर ढोंकों के अंदर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए, मिट्टी के लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक भड़कने लग गया, धूल के कण में अनहद नाद का कंपन खतरनाक, मकानों के छत से गाटर कूद पड़े धम से, घूम उठे खम्भे भयानक वेग से चल पड़े हवा में, दादा का सोटा भी करता है दांव बेच नाचता है हवा में, गगन में नाच रहे कक्का की लाठी वगैरह में मुक्तिबोध भयानक संकट काल की उस मूल्यवान प्रक्रिया को देख रहे हैं जिसमें प्रत्येक वस्तु अपनी सप्राणता गति और संभावना में खड़ी हो रही है। मुक्तिबोध वस्तुओं का प्राणाग्नि बम में बदलना लिख रहे हैं। चारों तरफ सचेत ज्वलंत प्रकाश का गिरुआ मौसम है। सक्रिय आत्माएं मजबूत संकल्पना के साथ रण क्षेत्र में कूद गई हैं। सबके भीतर व्यक्तित्वांतरण घट रहा है और खिल रहा है अग्नि का शतदल कोश। निसंदेह यह स्वप्न है। मुक्तिबोध के मुक्तिकामी काव्य नायक की उम्मीद की चटक रंगों में सुरखता हुआ हुआ स्वप्न जो पूरी शक्ति से स्वप्न की निराकारता से लड़ रहा है, किंतु स्वप्न तो स्वप्न है इसलिए टूट जाता है, मगर उसकी आत्मा में वचन के लिए प्यास जगा जाता है, जिसके कारण इस स्वप्न के सच्चे आशयों की खोज उसका मुहिम बन जाती है। यहीं से उसके लिए वह प्रकाश पथ प्रशस्त होता है जिसमें जीवन और जगत का सच्चा अर्थ उद्घाटित है। प्रज्वलित धी का वही परम उत्कर्ष जो अपनी क्षमता से दुह सपनों के कुटिल दबाव से मुक्त हो रहा है। इस प्रकार कविता के इन प्रकाश क्षणों का अनुभव पाठकों के लिए ऐसा ही है जैसे उन्होंने दुष्ट इच्छाओं से भरी किसी गहरी अंधेरी गुफा को लड़ते भिड़ते पार करते हुए उसका दूसरा आजाद और प्रसन्न किनारा खोज लिया है। मुक्तिबोध के यहाँ अंधेरा जितना अमानवीय और त्रासद है, उजाला उतना ही चमकीला और भव्य। यह ठीक ठीक आजादी के रंग का है। मुक्तिबोध अपने दीर्घ और बेचैन कविताओं के कवि हैं। कविता उनके लिए दुनिया को पुनः रचने वाली गंभीर चीज है। ऐसा भी लगता है कि वे जिंदगी भर एक ही कविता लिखते रहे हैं और अपने स्वप्न के ही नहीं कविताओं के भी अधूरेपन से जूझते रहे हैं। अंधेरे में भी वे अपने स्वप्न को एक संभावना से बड़ी परिणति नहीं दे पा रहे हैं। वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल वह फटे हाल रूप, तांगिंग तरिंगी वह गतिमयता, अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव वह सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता, वही फटे हाल रूप परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहां वह है। क्या यह सच नहीं है कि क्रांति के अवसरवादी नेतृत्वों के छल से पिछड़ती हुई शांति मैत्री न्याय और उदारता के दो मुहेपन के आहत मुक्तिका में विश्व जनता आज भी पूछ रही है, पता नहीं जाने कहां वह है। क्या यह सच नहीं कि पूंजीवादी विश्व के खतरे के सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्से की सबसे साफ समझ मुक्तिबोध की थी। वे हिस्से बेहद गूढ़ और जटिल है, इसीलिए मुक्तिबोध कविता के जटिल शिल्प के कवि है। फैंटेसी मुक्तिबोध की काव्य कला का औजार भर नहीं अपितु उनकी पक्षधरता और भविष्य दृष्टि का आधार है। इसी शक्ति से वे अपने कवि के साथ साथ अपने चिंतक का दायित्व भी पूरा करते हैं। प्रतिबद्धता को उन्होंने सृजनात्मक चुनौती की तरह लिया है। प्रतीक, बिंब, मिथक, फैंटेसी या अन्य भाषिक उपकरण उनके आगामिक स्वप्नों के लिए पूरी तरह तड़प के साथ संघर्ष करते हैं। इनके कारण मुक्तिबोध के लिए दुनिया के सारे भेद, उजले सावले किस्से और वास्तविकता के तमाम रूप या फैलाव आसमान हो जाते हैं। फैंटेसी जीवित यथार्थ ये सचेत अंतःक्रिया के साथ ही संपन्न होती है। ये वस्तुगत यथार्थ के सारे प्रस्तर सतहों को तोड़ती हुई उसके मूल्यवान आशय में प्रवेश करती है। इसलिए मुक्तिबोध के काव्य जगत में जीवन और जगत के तमाम अनुभव या प्रक्रियाएं अपनी सारता में प्रकट होती हैं। इस रूपांतरण के नियम विलक्षण हैं। इसमें तमाम ठोस संदर्भ, मान्यताएं, चरित्र या घटनाएं आदि ऐसी सूक्ष्मता को प्राप्त करते हैं जिसमें फैलाव और गहराई का अद्भुत संयम बराबर बना हुआ है। इसलिए चीजों की वह एकाग्रता भी सुरक्षित है जो मुक्तिबोध को अभिष्ट है। गांधी, तिलक या टॉल्स्टॉय मुक्तिबोध के लिए इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तित्व भर नहीं है अपितु सामाजिक यथार्थ की गतिमान ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंग है। उनकी परख तथा स्वीकृति के प्रति मुक्तिबोध की दृष्टि की द्वंद्वात्मकता आयम है। गांधी की जनसामान्य को प्रभावित करने वाली भव्यता के संकेत देने के साथ साथ वे उनके अंतर्विरोधों को भी लक्ष्य करते हैं। टॉल्स्टॉय भी अपने गुणों समेत उपस्थित हैं। टॉल्स्टॉय मुक्तिबोध के लिए भी मनुष्य की गहरी पीड़ा के रचनाकार हैं। पीड़ित मनुष्य के लिए एक समाधान टॉल्स्टॉय के पास भी था, किंतु रोमानी और अवास्तविक। टॉल्स्टॉय क्रिश्चियनिटी की आधुनिकता से प्रभावित थे। उनकी करुणा में मानवीय गहराई कम नहीं थी, किंतु उनके विजन में अमूर्तन था। इसलिए मुक्तिबोध उन्हें दूर सितारों में घूमता हुआ और वहीं से पृथ्वी को देखता हुआ लक्ष्य करते हैं। दूर चमकते सितारे मुक्तिबोध के लिए हरदम क्रियागत प्रणति की चुनौतियों से कटे हुए विचार और चिंतन है। ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे। जीवन की वास्तविक समस्याओं के समाधान न दे सकने वाले विचार ही उदास तारे हैं। तिलक के मस्तक कोश के फूट पड़ने में रामलीला शर्मा ने मुक्तिबोध की अपनी अपराध भावना या मृत्यु भावना का तिलक जैसे क्रांतिकारी पर आरोप माना है, किंतु तिलक यहाँ मुक्तिबोध के काव्य नायक की मुक्ति चेतना के लिए प्रेरणा का हार्दिक संस्पर्श है। वे उसके निष्ठा और शक्ति में घुल जाते हैं। कविता के संरचना से जुड़े हुए प्रश्नों को भी मुक्तिबोध ने अपने महान स्वप्न और संघर्ष की अपेक्षा के अनुरूप ही हल किया है। निसंदेह मुक्तिबोध प्रायः दुरूह कविताओं के बीच है। अतिशय प्रतिबद्धता, फैंटेसी या असंबद्ध बिंबों की श्रृंखला आदि के कारण उनकी कविता का शिल्प कठिन हो गया है, किंतु आवश्यकता उनके चिंतन और आकांक्षा से जुड़ने की है। उनकी कविताओं के लगभग दुर्भेद्य तिलिस्म की कुंजी यही है।